हमारा जो दिन पॉडकास्ट हुआ आपके साथ, मैंने तो घर जाके कन्वे किया, मैंने कहा भाईजान मैं तलाक दे रहा हूँ खाने
ये आप हर साल डॉक्टर साहब के साथ जो पॉडकास्ट
को
होती है ना, उसके
अब
बाद
अब मैं हर महीने आता रहूंगा।
तो सही बात है,
अच्छी बात है। मैं भी डाइट पर हूँ और ये भी डाइट पर है।
नहीं, वो वैसे रुजू रुजू कर सकते हैं ना, तो हम वो लेवरेज लेवरेज ले जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ये है कि लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है अगर, जैसे मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह सहरी नहीं की, आज मैंने सिर्फ दूध एक गिलास लिया और कुछ
मैं खुद
डेट्स वगैरह, ठीक है।
अच्छा,
वरना रोजाना ब्रो वो जो पराठे, यानी मैं वैसे हमेशा ना सैंडविच या कॉर्नफ्लेक्स या तलबीना लेता था। इस रमज़ान से शुरू से ही वो एक पराठे खिलाए गए और सब कुछ, तो वो एक ट्रेंड बना हुआ था पराठा खाने का, जिसमें आपके देसी अंडे भी हैं, इसमें घर का बीफ कबाब भी है और सब कुछ। इट बिकम्स वेरी हैवी एंड शुरू में, यानी शुरू शुरू टाइम में बड़ी प्यास लगना, शिद्दत से प्यास लगना खाने के बाद, और फिर अल्टीमेटली अराउंड 11-12 बजे जाके वो ख़त्म होती थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर,
इतना
मच
लाइट
मोर
फील होता है,
एनर्जेटिक।
इतना एनर्जेटिक फील करता है बंदा। मैं तो रोज़ाना नहीं, लेकिन एक दो दिन मैं इसी तरह से सहरी बहुत कम ना होने के बराबर, और फिर एक दिन फिर मैं नॉर्मल ले लेता हूँ। उससे ये है कि बड़ा ज़बरदस्त।
तो उसमें आप अफ्तारी के बाद की जो रूटीन होती है उसमें नॉर्मल डाइट वगैरह है चल रही होती है आप लोगों की, किस तरह
दो
की होती
तीन
है?
घंटे तो मतलब अफ्तारी, फिर उसके बाद भी एक मील मैं लेता हूँ, लेकिन 10 बजे के बाद फिर मेरी वो
अच्छा
ज़्यादा कैलरीज नहीं आती। ऊपर सहरी में पानी पी लिया, इसी तरह
अच्छा
से थोड़ा
खजूर
सा
वगैरह,
खजूर ले ली, बहुत कम ना होने के बराबर, 100 कैलोरीज कह लें। उसके बाद बस दिन फिर पूरा स्टार्ट हो गया।
अच्छा। मेरा भी ऐसा ही होता है कि अज़ान के बाद अफ्तारी की लाइट सी, जिसमें आई स्टार्ट विद खजूर और शहद वाला पानी तो लाजमी पीता हूँ मैं,
शहद वाला पानी,
वार्म लाजमी रोज़ाना पीता
अच्छा
हूँ विद एप्पल सिडर विनेगर ऑर्गेनिक वाला, और वो लेके अब पता नहीं कितना एम्प्टी स्टमक के लिए अच्छा है। मैंने तो पढ़ा था कि बहुत अच्छा अगर
उसको
आपके
डाइल्यूट करके ल्यूकवार्म वाटर मिले, बेहतरीन
बेहतरीन, तो वो पे
बेहतरीन।
लेके ना फिर हल्के से अफ्तारी कर ली एंड देन आई गिव अ ब्रेक, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद वापस आके सुनते पढ़ी एंड देन गिव अ ब्रेक, और उसके बाद फिर डिनर
डिनर
किया,
कर लिया,
और उसके बाद
फिर
ये
तरावी।
हाँ तरावियाँ पढ़ के जब घर जाते हैं तो फिर वो फ्रूट चाट का एक बॉल या फिर अगर दही वाले का बॉल बना हुआ है तो वो ले लिया, विच गिव्स यू एनर्जी, क्योंकि मैं रात को फिर रमज़ान में तो ज़रा जाग रहा हूँ तो वो
सही
फिर
है।
चलता है। वसीम भाई, एक और जो बड़ा, यानी आजकल का जो एक मैं समझता हूँ कि एक कोविड के बाद जो पेंडेमिक है वो स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेशन है, ठीक है। एंड मैं घर में गया था F11 में, ह्यूज हाउस माशाल्लाह, फुल ऑफ लग्जरीज, यंग सा बॉय था इन हिज टीन एज, उनकी मदर ने कहा कि मेरा बेटा एंटी डिप्रेशन पे है और सब कुछ। जब मैंने लड़के से बात की, हिज लाइफ वॉज परफेक्ट लाइक एनी थिंग, नो प्रॉब्लम वट्स एवर, नो हार्ट ब्रेक्स, नो ड्रग एडिक्शन, नथिंग एट ऑल, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा हुआ हुआ था जिसमें स्पोर्ट्स नहीं है और सारा दिन फोन और गेम्स और सब कुछ, और डेफिनेटली एक डिप्रेशन, एक मेंटल इलनेस भी है। और फिर जितने ज़्यादा FAQs रिसीव होते हैं, मैं एनजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, सो एक बहुत बड़ा एक एपिडेमिक बन चुका है पूरी दुनिया में। और इसमें यानी वी शुडन बी नाइव के टू थिंक कि सिर्फ नॉन मुस्लिम इसमें हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा इसमें हैं। और
बिल्कुल।
आई थिंक इस पर आज बात कर लेते हैं, और स्पेशली टूसी में हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह आपका ये फील्ड भी है, आप इसमें काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं इंशाल्लाह। सो क्या ख्याल आपका है? ये मेरा
ये जो आपने
एनालिसिस
बात
ठीक
की ना
है?
कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा अच्छी आपने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो इबादत में भी ठीक हूँ, और जो है मेरी नमाजें हर लिहाज से ना, मैं बड़ा, मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, मतलब मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ, लेकिन मैं फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन में क्यों आ गया? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसको आजमाइशों से गुजारता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सज़ा के तौर पे इस बीमारी में डाला जा रहा है, लेकिन आप पे अगर मुश्किल वक्त है तो अल्लाह ताला का ये भी वादा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है, ये अल्लाह ने वादा रखा है। वो जो बीमारी है ना, वो आपको बड़ा जो है ना डिसिप्लिन करने के लिए आई है, बड़ी चीज़ें सिखाने के लिए आई है। लोग जो है ना वो उस बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो फिर जैसे कहा कि डायरेक्टली एंटी डिप्रेसेंट्स पे और इन चीज़ों के ऊपर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, अगर बहुत केस बिगड़ा हुआ है तो वक्ती तौर पे अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो स्टार्ट में अगर ऐड उसको किया भी जाता है तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि क्या वो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, क्या वो जो है अपनी डाइट का ख्याल
डाइट कर
रखता है।
रहा
वाइटामिन डी डिफिशेंसी का और डिप्रेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से नींद के ऊपर देखें कि कहीं वो रातों तक मतलब सिर्फ जागता तो नहीं रहता, और जब सोता है तो फिर उसको सुबह की कोई होश नहीं है, मतलब पूरे दिन में उसकी वो रूटीन कैसी है उसको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कोई एक टीचर, कोई एक उस्ताद, कोई एक बंदा ऐसा है जिससे वो अपना ये मसला डिस्कस करता है, क्योंकि पेरेंट्स से ना बच्चे छुपा रहे होते हैं चीज़ें,
जी
और बाज़ औक़ात पेरेंट्स बड़े हार्श भी हो जाते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन नजर नहीं आ रही होती। ये जुमला कहा जाता है कि चंगा भला है ड्रामे करता है, इतना तुम्हारे ऊपर हमने इतने तुम्हें महंगे स्कूलों में डाला और ये देखो तुम क्या निकल रहे
हो।
हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फिक्र है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन ख्यालों में गुम है, उसके ख्यालात किस तरह के हैं। तो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं वो ज्यादा जरूरी है कि उसको आप हेल्प दें, क्योंकि उसको हेल्प की ज़रूरत है, आपका बच्चा बीमार है।
मैं तो बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें एक मेडिकल डॉक्टर थे, कहते हैं मेरे आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 35 ईयर्स और मैं बड़े यकीन से बात कर सकता हूँ कि 90% प्लस जो जितनी भी बीमारियाँ, मतलब उसने कहा हर किस्म की बीमारियाँ, इट स्टेम्स फ्रॉम स्ट्रेस। कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस या क्यों ना कोई इस तरह के कोई स्ट्रेसेस होते हैं जो हमारी इवेंचुअली थॉट से लिंक्ड होते हैं, उनका गहरा ताल्लुक डेफिनेटली हमारी थॉट से। कहते हैं इट्स ऑल स्टेम्स फ्रॉम देयर एंड इट लीड्स टू, कहते हैं इवन मेजर मेजर बीमारियां, कैंसर भी अगर आप जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं थॉट। और कहते हैं इनका इलाज भी, इनका इलाज, अब इस पर बड़ी रिसर्च आ रही है अबाउट हीलिंग और हाउ थॉट्स कैन एक्चुअली डेवलप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, स्टार्ट द प्रोसेस एटलीस्ट। मेडिकेशन अपनी जगह है, वो उसको कोई डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट ज़्यादातर जो ट्रॉमा होता है, कोई चोट लग जाना, कट लग जाना, इसके ऊपर तो हमें समझ लगती है, बट जो क्रॉनिक जितनी भी है ना डिजीज़ हो गई, जिसमें स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी होगी, जो चलती आ रही है इवन फिजिकल भी कुछ, उसका हमारे जहन से बहुत गहरा ताल्लुक है।
इवन ओसामा बिन लादेन भी कह रहा था ना, कहता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये नेगेटिव कमांड्स प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी आप कहेंगे ना कि डोंट बी स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन, तो वो डोंट के वर्ड को फैदम नहीं कर सकता, वो स्ट्रेस या टेंशन के वर्ड को फैदम कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू गाइस, जो भी सुन रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है? डू वी ऑल थिंक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है? इवन जो स्कीर्स होते हैं, वो जब उनको कमांड ये नहीं दी जाती, वॉच आउट द ट्री, वो दरख्त को देखेंगे और जिस चीज को इंसान देख रहा होता है ना, उसी में जाके इंसान फोकस करता है, उसमें लगता है। सो वो कहते हैं कि वॉच द पैथ। तो इसलिए ये जो हमारा, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। व्हेन यू लुक एट द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, व्हेन यू वॉच द ट्रीज एंड द स्टोन्स इन योर लाइफ, ऑल व्हाट यू विल डू इज गो एंड हिट देम और आप गिर जाएंगे। बट व्हेन यू विल वॉच द पैथ कि रास्ता कहाँ से निकल रहा है, तो अल्लाह ताला आपको उससे डेफिनेटली निकालना शुरू कर देंगे। इवन बाइकिंग की फील्ड में भी ना, ये हमारा बड़ा कॉमन रूल है, जब हम कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं ना, इवन रेसिंग बाइक्स के लिए भी, हमारा चेहरा बिल्कुल इधर नहीं होता, हमारा चेहरा उधर कॉर्नर भी तक होता है, क्योंकि यू गो वेर यू लुक एट। आपने जहाँ जाना है आप उस कॉर्नर की तरफ देखते हो। सो ये एक बाइकिंग में यूनिवर्सल रूल है। सो अगेन यू गो वेर यू लुक एट। अगर आप ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों को जहन में देख रहे हैं कि यार मेरे क्या बनेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे मामला क्या करेगा फाइनेंशियली, तो फिर हो सकता है वही हो। और हदीस में आता है ना, अंदर अब्दी भी अपने बंदे गुमान के
गुमान जो गुमान रख रहे हो वो वैसे ही है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं जब वो कहते हैं ना कि हमें एंग्जाइटी है, तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन करता हूँ कि एंग्जाइटी स्टार्ट कैसे हुई। तो वो बात करते हैं कि मोहल्ले में किसी की सडन डेथ हो गई, तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि दुनियादार अचानक मरता है, दीनदार की मौत पूरी प्लानिंग से होती है, उसको अल्लाह पहले से ही ना अपने प्लान के मुताबिक अपनी तरफ बुलाता है। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फलाना मर गया तो अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ, ये फेयर डेवलप होता है। अब फाइट एंड फ्लाइट जो है ना, ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है हमारे वजूद के अंदर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं और एकदम से शेर आ जाता है, तो हमने जान बचाने के लिए दौड़ लगानी है। अब वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, वो फाइट एंड फ्लाइट से हमें मिलेगी, कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन जैसे ही हम बच गए, किसी दरख्त के छाँव के नीचे हम बैठ गए और हम रिलैक्स कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने शेर से बचा लिया, अब जो एक्टिवेट होगा वो होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो और हजम करो। एंग्जाइटी में एक ना नजर आने वाला शेर, फेयर, वो मुस्तकबिल का डर भी हो सकता है, मौत का डर भी हो सकता है।
इवन आई थिंक डेली रूटीन में हमारे इतने स्ट्रेसेस होते हैं, छोटे मोटे आप, बल्कि हमारी ये जो फ्लाइट एंड फ्लाइट है, जैसे लाइक हमारा एक सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक रिस्पांस है ना हमारी बॉडी देती है। तो अब आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है घर में, पेरेंट्स के साथ, बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, आपस में, बाहर किसी बिजनेस में, किसी मामले में, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट, दैट लीज वो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं एंड दैट ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड सिस्टम, आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है। और अब तो मैं नोट करता हूँ कि हमारी जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, आप बल्कि उसमें बताइए कभी, आई थिंक हम लोग मोस्ट ऑफ द डे ना स्ट्रेस के अंदर ही स्टे कर रहे हैं, हमारा रेस्ट वाला पीरियड जो है ना,
कोई लड़ाई हो गई, किसी ने गाली दे दी, ठीक हो गया, अब वो गाली एक दफा दी गई,
बिल्कुल,
एंग्जाइटी का पेशेंट उसको 50,000 दफा अपने दिमाग में रिपीट कर रहा है और उसी के अंदर फंसा हुआ है, ऑब्सेस्ड है उसी थॉट्स के साथ कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मुझे एक गाली दी, अब वो ना नजर आने वाला शेर उसको नजर आ रहा है,
नजर आ रहा है, एग्जैक्टली,
और वो फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर्ड है,
और ही इज इन दैट स्टेट,
बिल्कुल
बिल्कुल,
जैसे गाड़ी के एक्सीलेटर पे आपने पैर रखा हुआ है और आप उसको खींच नहीं रहे हो, गाड़ी की जो हालत होगी वही बंदे की हो जाती है, फिर साइकोसोमेटिक यानी कि जो नफ्सियात हैं वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इस हद तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है कि बंदा सोच रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, और उसको हार्ट अटैक का पेन स्टार्ट हो जाएगा,
आई थिंक हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाता है,
बिल्कुल सही,
बल्कि मुझे पढ़ा था कहते हैं कि हमारे जो जब ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं कि किसी किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट करनी है तो उसमें आपको स्ट्रेस हार्मोन्स देते हैं
कॉर्टिसोल, वो
ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्ड ना करे, तब वो सर्जरी प्रोसीजर हो रही होती, तो आप सोचे हम इतने हाई स्ट्रेस में है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी जब फारिग हुआ पड़े तो
फिर एड्रिनल फटीग का नाम भी दिया जाता है, बॉडी की बस हो जाती है, इतना ज्यादा कॉर्टिसोल स्पाइक करता है कि वो जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ये जो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ना कि रिजेक्शन ना हो, जो बॉडी का अपना रिस्पांस है उसको रोक लेते हैं, तो आप जब स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपने उस कॉर्टिसोल को इतना ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं बॉडी में, और फिर कॉर्टिसोल जब लेवल्स बढ़ते हैं तो वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लेवल्स बढ़ाता है, शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं, तो वहाँ से डायबिटीज़ की एक बड़ी वजह स्ट्रेस लेना भी है। अक्सर ख्वातीन आती हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुई, कहते हैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उसी ट्रॉमा से होते 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 अभी मैंने टेस्ट कराया, मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा था तो देखा कि मेरी शुगर भी बढ़ गई है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि 90% या शायद उससे भी ज़्यादा बीमारियाँ स्ट्रेस के साथ मुंसलिक हैं, तो वो गलत नहीं है।
अच्छा, इसमें ना मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ना एंग्जाइटी को डिफाइन कर दें, और इवन एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी ना, कि हम आपने जैसे कहा ना कि पेशेंट आते तो आप मुझसे पूछते हैं कि एंग्जाइटी कब शुरू हुई, सो मतलब अगर आप किसी पेशेंट से पूछें या किसी पूछें कि व्हाट इज एंग्जाइटी, मतलब हाउ डू द पेशेंट्स एक्चुअली नो कि उनको एंग्जाइटी किस लेवल की है और किस तरह क्लैरिटी है।
मैंने जो है ना वो अली भाई के साथ, मोहम्मद अली भाई के साथ जो वीडियो में मैंने अपनी को कहा, मैं 3 ईयर्स एंग्जाइटी से गुजरा हूँ ना, तो मैंने जब अपनी वो स्टोरी बताई ना, तो उसके बाद कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया जो कह रहे कि हमें पहली दफ़ा पता चला कि हमें एंग्जाइटी है, नहीं तो उन्होंने कोई सीटी स्कैन, कोई एमआरआई, कैंसर तक उनका जहन गया हुआ था कि पता नहीं हमें कौन सी बीमारी है। अच्छा। एको करा चुके हैं,
अच्छा
ठीक,
अच्छा।
है ना, ECG करवा चुके हैं,
होता है एंग्जाइटी,
बिल्कुल एंग्जाइटी, और फिर वो लीड करती है पैनिक अटैक्स की तरफ। अब एंग्जाइटी है क्या? मौजूद लम्हे में ना रहना, मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना, माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो जो इंसान ये सोचता है कि मेरे बीवी बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल, उसने पालने वाले की पालने वाली सिर्फ पे ईमान नहीं लाया। एंग्जाइटी वसवसे और शक की बीमारी है, आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे, आप हर चीज़ पे खुद पे शक करोगे, दूसरों पे शक करोगे, आप इतना आइसोलेटेड हो जाओगे, दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से शूट करेगी, टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है। इसी तरह से दम घुटना, सफोकेशन, ये प्रॉपर लोग फील करते हैं। इसी तरह से इतनी जिस्म में थकावट कि 5 मिनट का काम करना भी मरीज़ के लिए अजाब होगा कि अगर मैं ये 5 मिनट भी काम करूंगा तो पता नहीं मैं सारा दिन कैसे गुजारूंगा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, बंदों से कतराना शुरू हो जाते हैं, एक कमरे तक बंद हो जाते हैं, और फिर जब भी कोई फीलिंग आती है तो वो सर का दर्द भी तो हो सकता है, लेकिन एक एंग्जाइटी का पेशेंट क्या सोचेगा, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, कहीं अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है, एंग्जाइटी में ना जब फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हुआ होता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग समझ रहे होते हैं कहीं मुझे गुर्दों का कैंसर तो नहीं है, कहीं मेरे गुर्दे फेल तो नहीं हो रहे। तो इस सेल्फ टॉक भी बड़ा ज़रूरी है, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना भी ज़रूरी है, लेकिन ख़ुद से कि भाई मेरी मौत का एक दिन मुकर्रर है और मैं वक्त से पहले नहीं जान सकता, और अपने आप को यकीन दहानी कराना कि ए ईमान वालों मज़ीद ईमान लेके आओ। ईमान शक की वसवसे की नफ़ी करता है, जितना जितना आपका ईमान पुख्ता होता जाएगा उतना उतना ये ख्यालात आपके जहन से निकलते जाएंगे, आप इनका बसेरा अपने दिमागों में करवा देते हैं कि अब अगर कोई नेगेटिव थॉट आई है तो उसको आपने इतनी दफ़ा रिपीट किया ना कि अब वो आपकी जान नहीं छोड़ रही। और इसी तरह से फिर पैनिक अटैक होता है, वो तो फिर इतना ख़तरनाक होता है कि उसमें आपको लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यही मोमेंट है और जो मौत का फरिश्ता है वो आ चुका है, और उससे जब वो लोग निकलते हैं तो पैनिक अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक फेयर ऑफ एनदर पैनिक अटैक है कि कहीं ये फिर ना
आ जाए। उसकी वजह से अटैक्स होते भी, आई नो समवन के साथ ही हुआ है, एक पैनिक अटैक हो गया ना, अब वो उसकी जो जब पैनिक अटैक होने से पहले जो सिम्टम जो फीलिंग्स आई थी ना, अब वो नॉर्मल सी फीलिंग्स थी, थोड़ा सा जैसे होता है ना सांस फूल जाना है, बिल्कुल इस
एक
तरह की,
औरा सा होता है ना, लेकिन
हाँ।
उसके बाद फिर
अब वो
वो
जब भी वो कहते हैं कि जब भी वो थोड़ा सा भी वो सिनेरियो सिमिलर होता है ना, उनको लगता है पैनिक अटैक, और उसके बाद मल्टीपल अटैक्स हो गए जस्ट थिंकिंग कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, एंड इट रिजल्टेड इन एक्चुअल
बिल्कुल
पैनिक
इसमें
अटैक।
होता ही है कि मैं खुद भी एंग्जाइटी के एक फेज से गुजरा हूँ। ये होता है कि व्हेन यू आर वरिड कि मुझे वो दोबारा ना हो जाए ना, ये जो वरी है ना कि मुझे दोबारा ना हो जाए, मुझे दोबारा ना हो जाए, और आप हर चीज़ ना जहन में कनेक्शंस बनाते हो, उस वजह से मुझे हुआ था, उस वजह से मुझे
हाँ,
हुआ
और वो
था,
पूरे पैकेज बनाते कि
पूरा
क्यों वो भोलने
पैकेज
लगा
बनाते
है।
हैं क्यों होने लगे, और फिर
बिल्कुल
आपका ना जहन उससे ना यानी एक कनेक्टिविटी डेवलप कर लेते हैं कि जब ये फेज़ आया तो उसमें वही हार्ट बीट तेज़, वो बंदा जो 100 सीढ़ियाँ चढ़ ले तो सांस नहीं चढ़ता, वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ता उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट इतनी तेज़ कि हर टाइम 24/7 हार्ट बीट तेज़ है, फिर होंठों का सूख जाना,
बिल्कुल
प्यास लगना, बार बार वॉशरूम का आना, और अगेन यानी लोगों से बात करने की कॉन्फिडेंस शैटर हो
बिल्कुल,
जाना,
सेल्फ स्टीम
हाँ
आपकी
सेल्फ
सब
स्टीम
बाउंड हो
लोअर
जाती
हो
है।
जाती
बिल्कुल
है,
बिल्कुल
और यानी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, लेकिन जब मैं उस फेज़ में था ना, आई नेवर यूज़ टू टॉक, मैं चाहता मैं अकेला रहूँ, घर पे मेहमान ना आए, कोई फ़ोन बजना ना दिल की धड़कन तेज, ओह ये क्या न्यूज़ आई होगी, सुभान अल्लाह ब्रो, इवन घंटी का बजना बाहर कोई आफत आ
कुछ
गई
बुरा
है,
आने
कोई
वाला,
बुरा
सीरियस
आने
फियर
वाला
ऑफ
है,
द अननोन
सो
और
ये
फ्यूचर
एग्जैक्टली
का।
जो है ना,
सुभान
ये पता है वसीम, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, दोज हु वेक अप विद एंग्जाइटी, यानी द लाइफ इज नॉर्मल कम्प्लीटली फाइन, बट दे व्हेन दे वेक अप एट अ पैनिक पैनिक अटैक तो मैं नहीं कहूंगा बट एंग्जाइटी अटैक,
ठीक है।
आपको बस ऐसे कोई केसेस आए हैं या
बिल्कुल, उसकी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे कोई वजह नहीं होती,
नहीं होती?
लेकिन जब हम प्रॉपर उनसे बात करते हैं, जब वो खुलते हैं, तो पता चलता है कि कोई डिस्टर्ब चाइल्डहुड है, कोई बचपन में कुछ ऐसी चीज़ देखी थी, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, मार्क्स पूरे नहीं आए, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फेलियर है, कोई अनरिजॉल्व कोई मसला चला आ रहा है
बिल्कुल
जो कि चलते चलते यहाँ तक आया है। वो ज़रा सा जब वो खुलते हैं तो पता चलता है कि पीछे कोई ना कोई बात ऐसी थी। जैसे उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता, और चेहरे पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो मैंने
क्या भी स्ट्रेसफुल
तो
टाइम
मैंने तो मैंने तो मैंने
में
कहा कि देखें जी, ये आप रहने दें, ऐसी बात ना करें, जो ये डिनाइल में आप हैं ना, बगैर स्ट्रेस के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल जो एंग्जाइटी है, अगर वो
हाँ
एग्ज़ाम से पहले नहीं होगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? पहले आप एक्सेप्ट तो करें कि आपकी
हाँ
लाइफ में मसले चल रहे हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बेहतर इंसान वो है जो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप अगर एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो आपने तो पहला स्टेप ही नहीं लिया। तो फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे, तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बंदा कहता है कि दो ही लोग हैं जिनको एंग्जाइटी नहीं होती, एक साइकोपैथ्स और एक वो जो कि कब्रिस्तान में दफन है, जो जिंदा है ना उसकी लाइफ के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं।
ऐसे पेशेंट से मैं भी मिला, वो कहते हैं मैं स्ट्रेस लेता नहीं हूँ बट समटाइम्स आई वेक अप इन एंगजाइटी, पैनिक अटैक हो रहा होता है मुझे और बड़ा लंबा चलता है सारा, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका जैसे ही वो उठते हैं ना कभी कभी यानी दिस हैपन्स रेयरली, तो उनको वो अटैक क्यों आता है, जब हमने मज़ीद डिग इन किया और डीप डाउन गए तो फिर उनको मेमोरीज पुरानी याद आना शुरू हो गई, और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हाँ मैं जब अराउंड 7th 8th क्लास में था, मैं एक रात को उठा और मैं बड़ा डर गया था बिकॉज़ मैं अकेला सो रहा था कमरे में, यूजुअली मेरे सिबलिंग्स साथ सोते थे, और मैं डर गया, और डरने के बाद ना सिंस मैं इतना एक डिसओरिएंटेड उठा उठा ना, मुझे मेरा नाइट सूट मिल रहा था ना, मुझे कोई घर में नज़र आ रहा था और डोर लॉक था पेरेंट्स का, तो कहते हैं मैं इतनी टेंशन में था, तो उस टेंशन में ही ना मैं फिर सो गया और मुझे ना वो कुछ दिन तक टेंशन रही, अच्छा वो ट्रिगर किया तो पता चला कि कोई ऐसा ख्वाब या कोई ऐसा स्ट्रेस उनको मिले ना जो वो सेम फीलिंग ट्रिगर कर दे, देन ही वेक्स अप इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो उसका ये डेफिनेटली ब्रीदिंग टेक्निक्स बड़ी हेल्प करती हैं
बिल्कुल
इंसान को,
डीप
हम
ब्रीदिंग,
सोल्यूशन बिल्कुल
ये जो मैंने कहा ना रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये वेगस नर्व के कंट्रोल में है। तो एक चीज़ वैसे तो उसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा पानी भी चेहरे के ऊपर ज़ोर से मारे उससे भी रिलीफ हो जाता है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना कि जब हम पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हम कोई अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत जगह के सामने खड़े हैं, एंग्जाइटी का पेशेंट ऐसे उसका टनल विजन होता है ना, वो बिल्कुल फंसा हुआ रहता है, हर वक्त उसके माथे पे एक परेशानी है और वो एक ही जगह को लेके ना एक ही पॉइंट पे
पॉइंट पे
बिल्कुल
सो
फंसा हुआ है। पेरिफेरल विजन जब आप एक्टिवेट करते हैं, जब आप पूरी अल्लाह की कोई खूबसूरत कोई मरी चले गए, कोई ग्रीनरी है, उसको आपने खुली नज़र से देखा और आपने ना बाहर की तरफ देखा, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और वेगस नर्व रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करती है। बहुत सारे एंग्जाइटी के पेशेंट्स एसिडिटी की शिकायत कर रहे होते हैं, मैदे का निज़ाम धर्म भरम हुआ होता है डाइजेशन, और उसके लिए फिर वो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स भी ले रहे होते हैं, मैदे की और अद्वियात भी ले रहे होते हैं। ये हमारा मेन ब्रेन है, मैदा हमारा सेकेंड ब्रेन है। जब तक मेन जो ब्रेन है वो स्ट्रेस में है, हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। अब आप हद चेक करें कि स्ट्रेस वहीं का वहीं है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा और अद्वियात का अंबार लिया जा रहा है, और ये जो PPI है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, ये वाइटमिन की डिफिशेंसी करा देती हैं, ख़ासतौर पर वाइटमिन B12 की डिफिशेंसी करा देती है। वाइटमिन B12 का नर्वस सिस्टम का और रेड ब्लड सेल्स का क्या लिंक है वो हर कोई देख सकता है आजकल। तो ये नहीं कि वो मेडिकेशंस जो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज भी करा रही हैं वो आप ले रहे हो, उनके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो सही थेरेपी थी वो उसकी तरफ आप नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बस उस बीमारी को खींचे जा रहे हो, उस एक बीमारी से कई बीमारियां निकलने वाली हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि लोगों को हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ लेके आना है, वही जो हम बात करते हैं अल्लाह ने हमें मुशक्कत के लिए पैदा किया है, एक्सरसाइज करने से वो जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है, ये जो फाइट एंड फ्लाइट में जो हार्मोन, उनको हम यूज़ कर लेते हैं, उससे यह है कि वो एंग्जाइटी हमारे ऊपर हावी नहीं होती।
और ये माइंड जो है हमारा, जैसे इतनी पावरफुल चीज़ है ना सुभानअल्लाह, ये जो प्लेसिबो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इतना पावरफुल है। देयर वाज दिस आई थिंक केमिकल और कोई बायोलॉजिस्ट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ही वाज वर्किंग एट, कहते मैं फार्मेसी में, हम लोग रिसर्च करते थे मेडिकेशन की, तो ही वाज टेलिंग कि मैं कैंसर की मेडिकेशन और मेजर बीमारियों की ना उस पर हम टेस्ट करते थे, कहते बनाते थे, फिर हम एक टेस्ट ग्रुप होता था, कहते उनको हम मेडिकेशन देते, फिर हमने एक उसका पार्ट ऑफ द टेस्ट ना हमने प्लेसिबो भी देना होता था सिमिलर साइज ग्रुप को। तो कहते जनरली जो मेडिकेशन हमने बनाई उसका इफेक्ट होता था 75 सक्सेस रेट ना 75% के लगभग। कहते जो प्लेसिबो का है ना, कहते वो कम से कम भी ना 25-30 है, कहते इन सम केसेस 40-50-70-75, मतलब एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट, जो दवाई ने इफेक्ट किया है प्लेसिबो का एग्जैक्टली सेम इफेक्ट है।
मेरी अपनी स्टोरी है कि फाइनल ईयर में था मैं, तो ये कैसर भाई थे, वो ट्रेनर थे ना, बड़े अच्छे ट्रेनर, बड़ी मोहब्बत दिखाते थे, बड़ा अच्छा वो ट्रेन करते थे। तो एक दिन मैं जिम गया तो मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत गिरे हुए थे और मैं बिल्कुल वर्कआउट के मूड में नहीं था, तो मैंने कहा कैसर भाई आज वर्कआउट नहीं होगा, आज मैं छुट्टी करता हूँ। कहते हैं वर्कआउट करोगे, मेरे पास एक टैबलेट आई है वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम खाओगे तो तुम ऐसा वर्कआउट करोगे। पहले उन्होंने 15 मिनट मुझे सिर्फ उस जो है ना तारीफ फजाइल बताए, उसके बाद जब मैंने वो पिल ली उसके बाद कहते हैं कैसा बेहतर महसूस हो रहा है। 15 मिनट बाद ना मैं ऐसे चार्ज था ना और मैंने ज़बरदस्त वर्कआउट किया, साथ मेरे दोस्त भी था। जैसे हम वापस पहुंचे तो मैंने कहा यार सिकंदर क्या ही कोई ज़बरदस्त, ये पूछो ये कौन सी वाइटमिन थी क्या था। कहा कि यार अमाइनो एसिड की टैबलेट थी, वो वैसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ तुम्हें जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार किया था। और यकीन जाने कि वो जब उन्होंने मेरी वो 15 मिनट प्रॉपर वो साइकोथेरेपी की या जो मेरी काउंसलिंग की, तो मेरे वो जो एनर्जी लेवल जो ड्रॉप हुए हुए थे वो प्रॉपर तरीके से वापस आ गए। तो शायद पढ़ाई की वजह से उसका स्ट्रेस होगा कि उस दिन मैं बेहतर नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदे के साथ बैठ के सिर्फ प्लेसिबो उसने मुझे एक
दिया,
बराए नाम एक दवाई दे दी और सिर्फ ये बता के किसके क्या क्या फायदे हैं, और मुझे उसने ये बावर कराया, यकीन कराया कि इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा। और फर्क
ये ऐसे ही है कि हम लोग अक्सर ना वो डॉक्टर होता है ना वाइट कोट में है और वो डॉक्टर उस माहौल में बैठे तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अगर वही डॉक्टर ना हमें किसी कैफे में मिल जाएगा ना नॉर्मल जीन्स पहन के तो हम शायद उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। यू नो इट्स दी हमारा द वे आर ब्रेन वर्क्स इज दैट हम अगर अथॉरिटी से बात आ रही है और वो उस हमें लगता है हमारा बिलीफ सिस्टम उस पर है ना, मानते हैं हम, तो वील उसका इफेक्ट हमारे पे होगा। अगर हम नहीं बिलीव करते ना इट विल अफेक्ट अस, तो वो नहीं अफेक्ट करेगा चाहे वो दवाई क्यों ना।
एक वो केस स्टडी भी बड़ी डिटेल में आती है ना कि वो जो नॉर्मन्स कजन्स था उसको एक दिन नॉर्मल जा रहा था अपने ऑफिस वगैरह तो उसको ना पेन हुआ डायग्नोज, उसी स्वेलिंग भी चीज स्टमक में, वो चला गया। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड केस है। और वो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हल्की सी पेन थी बट ही वॉज डूइंग फाइन। डॉक्टर्स ने कहा आपको तो स्टेज 3 या कैंसर है, स्टेज 4 या 3 बोला उन्होंने। तो वो कहते हैं मुझे वाकई में, कहते हैं हाँ भाईजान आपके पास तो सिर्फ अराउंड 1 मंथ 2.5 मंथ रह गए ज़िंदा रहने के लिए। वो कहते हैं मुझे इसने इतना आई वॉज डिस्ट्रेस्ड और मैंने तो ज़िंदगी से हार मान ली और मैं घर आया हूँ, मुझसे हिम्मत ही ना, मुझसे चला ना जाए, मेरी आवाज़ मधम हो गई, मेरे हाथों में जान मुझे फील नहीं हो रही थी, मैंने अपने दरवाजे को लॉक कर लिया अंधेरे में, मैं रोता रहा कुछ दिन तक, मैं रोता रहा, मेरी फैमिली मुझे नॉक करती रही निकलें निकलें, मैं नहीं। अच्छा, मेरा वेट लूज़ होने शुरू हो गया, मेरे होंठ ड्राई होने शुरू हो गए, मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते कि मैं चला गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं मरने वाला हूँ और सारा ठीक है। कहते हैं जब 1-1.5-2 दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि मैं तो बड़ा फिट एंड फाइन ऑफिस जा रहा था, काम पे जा रहा था, वो तो जब से मुझे न्यूज़ मिली है मैं लेट गया हूँ। अगर मुझे न्यूज़ ना पता चलती तो आई वॉज़ डूइंग फाइन। तो उसने कहा कि आई विल नॉट गेट कीमोथेरेपी, और मैं ऑफिस से कहा कि मुझे 3 महीनों की छुट्टी चाहिए, एंड ही सेट कि जो टाइम मेरे पास बचा है ना, आई विल एन्जॉय माई लाइफ, आई विल स्पेंड दिस टाइम विद माई फैमिली, विद माई किड्स, मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा एंड आई विल हैव अ ब्लास्ट। और फिर उसमें ये भी आता है कि उसने कॉमेडी मूवीज़ देखी और सब कुछ, लाफिंग थेरेपी जो है ना वो उसने की, बड़ी प्रैक्टिस। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो इस तरह रहा तो तकरीबन 1.5 महीना गुजरा ना, उसको उसने कहा कि यार ये ना हो कि खुदा ना खासा मैं कहीं कहीं गिर जाऊँ। ही वॉज़ अ नॉन बिलीवर। तो मैं चेक तो कराऊँ कहाँ तक पहुँचा। तो जब वो गए तो उन्हें टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आपने कौन सी मेडिकेशन ली है। कहते मैंने कोई मेडिकेशन ना, कीमोथेरेपी ना कुछ करवाया। कहते हम दोबारा टेस्ट करेंगे आपके, प्रॉब्ली द टेस्ट रिजल्ट आर नॉट करेक्ट। दोबारा टेस्ट किए, देर वॉज नो सिम्टम ऑफ कैंसर।
बराबर
सो एक उस पर टाइटल है ना उस रिसर्च का, अ मैन हु लाफ्ड हिज वे आउट, ठीक है, उसके नाम से।
बराबर
यानी उसने हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ, इवन स्नेक बाइट एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें एक बंदे को कहा गया कि हम आपको स्नेक बाइट देंगे, ठीक है, आपको एक स्नेक बाइट करेगा और जैसे ही करेगा तो हम आपको उसका एंटी वेनम जो है ना वो लगा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उन्होंने पट्टी बांधी, उसको लटाया पूरे एक रूम में, और उसको ना देर वॉज नो स्नेक, देर वॉज नथिंग, उन्होंने सिर्फ 2 नीडल्स ना उसको ऐसे चुबाई, प्रिकी, सिंपल हाइजेनिक नीडल्स, प्रिकी। उसने चीखा चिल्लाया ये वो, मुझे सांप काट गया, मुझे बचाओ, ये वो। कहते दो ना एंटी वेनम दो ना वो सर। उन्होंने कहा एंटी वेनम हमको नहीं देंगे, लेट मी लेट लेट अस सी कि क्या रिजल्ट होता है। वो इतना पैनिक में, एंड ही डाइड, यस ही डाइड। और जब उन्होंने आगे उसको उसको
बड़ा बड़ा डेडली एक्सपेरिमेंट कर गए,
यस ही डाइड आउट ऑफ द शॉक और वो सब कुछ। जब उन्होंने उसका वो किया ब्लड, यानी उसको बायोप वो सारा किया, पोस्टमार्टम किया, उसके ब्लड टेस्ट लिए, देयर वर साइंस ऑफ पॉइजन इन हिज ब्लड
बिल्कुल ऐसे
विदाउट हैविंग अ स्नेक बाइट।
स्नेक बाइट
क्यों? क्योंकि इंसान को जो माइंड है ना, जितना ये प्रोसेस करता है, जितना यकीन के साथ ना, इवन उमर बिन खत्ताब ने कहा था ना कि माई हार्ट इज एट पीस, आई नो वट इज गोइंग टू हिट मी कैन नॉट मिस मी, एंड वट इज गोइंग टू मिस मी कैन नॉट हिट मी। सो वी शुड बी कंसर्न अबाउट द थिंग्स विच आर इन आर कंट्रोल। मैं कहता हूँ जो चीज़ें आपके काबू में ना उनके बारे में परेशान हो और काम भी करें, एक पॉजिटिव स्ट्रेस लें, यू स्ट्रेस लें, ओवर स्ट्रेस ना हो, बट डू नॉट बी कंसर्न अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल।
यार इस्लामी जो कॉन्सेप्ट है ना कदर का,
अच्छा
मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह लोग बल्कि इस पे कंफ्यूज होते हैं कि यार जो इस तरह क्यों है। मैं कहता हूँ अगर ये ना हो ना तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो। ये शुक्र है और शुक्र अल्लाह ताला ने बताया कि यार आपका जो रिस्क है ना वो लिखा हुआ है,
लिखा हुआ,
ठीक है। अगर नहीं हो ना लिखा हुआ तो भाई फिर मैं तो हर वक्त कंपैरिजन करूंगा, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है, हम तो इस कंपैरिजन में लगे रहेंगे, फिर मेरी मेहनत ज़्यादा, मेरा रिस्क क्यों कम आ रहा है या उसकी कम की वजह से ज़्यादा क्यों है, दिस विल जस्ट स्ट्रेस अस आउट सो मच। इसी तरह क्या होने वाला है भाई, जब हमें बता दिया गया कि यार सवाल इतना सिंपल फार्मूला है कि यार आपकी एक लाइफ है, आपको नहीं पता कितनी है, यू डोंट नो हाउ मेनी डेज यू हैव लेफ्ट, आपका किस तरह डेथ होनी है इसका सेहत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सीडेंट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे अंदर कौन सी बीमारी चल रही है हमें नहीं पता। आर जॉब इज सिंपली टू डू द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटर जाना बस।
और ब्रो अल्लाह ताला पे ये भी एतबार के वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। सो अल्लाह का जो प्लान है ना वो मुकम्मल हिकमत, अदल, इल्म,
परफेक्शन
और मोहब्बत के साथ वो प्लान है। वमा अना बिज़ुल्लामिल अबीद, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जुल्म नहीं करूंगा। सो व्हेन यू यार सुभान अल्लाह, वो जो हम एग्जांपल भी देखते हैं कि जिसमें अगर बेटी स्कूल से बाहर निकले और देखे कि माँ बैठी हुई है स्टेयरिंग के पीछे और वो बैठ जाए, और माँ अगर घर की डायरेक्शन में नहीं भी जा रही, कहीं और जा रही है, शील नॉट पैनिक, शील नॉट स्क्रीम एंड शाउट कि मुझे कहाँ लेके जा रही है, मुझे आप ये ठीक है, हेल्प हेल्प, कभी नहीं करेगी, बिकॉज शी नोज कि माँ के हाथ में स्टेयरिंग है। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा घर के डायरेक्शन में नहीं जा रहा और वो ड्राइवर कहीं और लेके जा रहा है, शी माइट पैनिक।
बिल्कुल,
वैन वी नो द स्टेयरिंग ऑफ आर लाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, और एक माँ क्या है, वो तो 70 माओ क्या, 1000 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। सो वाई शुड बी टेक स्ट्रेस, एंड वो जस्ट ये कि अल्लाह नोज, अल्लाह के प्लान में, या अल्लाह आई ट्रस्ट योर प्लान, मैंने आपके हवाले अपना कर दिए, जो होगा मुझे पता है मेरे लिए खैर और बेहतरी का बायस है, मुझे बस अपनी इसलाह करनी है कि ये मैं कहाँ गलत था, जो आप मेरी इसलाह करना चाहते हैं और मैं आप करीब आना चाहता हूँ। तो आई थिंक
प्रॉब्लम्स तो इनेविटेबल है, वील हैव हर किस्म की प्रॉब्लम्स आएंगी, जो सिमे शुरू में भी कह रहे थे ना कि लाइफ तो है, इट्स पार्ट ऑफ टेस्ट, आसानी है फिर मुश्किल है. तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है ना, तो हम उसके ऊपर सोच सोच के उसको अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि वी आर अनएबल टू गेट आउट ऑफ दिस. और यही जो बात है कि या तो पास्ट का गम लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ जाती हुई, या फिर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. जबकि रियलिटी ये है कि जो मैं बात कर रहा था कदर के कॉन्सेप्ट की, वो है कहता है यार आप प्रेजेंट में रहो ना, बिकॉज आपसे आज आज आपके कंट्रोल में है, लाइक दिस मोमेंट इज इन माय कंट्रोल. ना पास्ट मेरे कंट्रोल में, ना फ्यूचर मेरे कंट्रोल में. अल्लाह ताला ने मुझे उससे बड़ी जिम्मा कहते हैं कि भाई तेरा ना पीछे कंट्रोल जो हो गया वो अब यू कांट चेंज इट, आगे जो है ना वो भी आपके कंट्रोल में. सो यू कंट्रोल दिस मोमेंट ऑफ योर्स. अभी बैठा हो, अगर अजान की अजान की आवाज़ आती है तो नमाज जाके पढ़ सकते हो, दिस इज इन योर कंट्रोल. आप अगर नहीं जाते, यू हैव टेकन अ कॉन्शियस डिसीजन.
और ब्रो पास्ट का सोच ड्वेल करके, ड्वेलिंग इन द पास्ट, यू डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंट. यानी आप सोच सोच के, सोचने से कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा. अगर सोचने से कुछ चेंज हो जाता तो हम कहते हैं आप बहुत सोचें, सारा दिन सोचते रहें कुछ चेंज हो जाएगा. बट जब वो चेंज नहीं होना, आप अपने प्रेजेंट क्यों रून कर रहे हो भाई? माइंडफुलनेस में आओ, लिव द प्रेजेंट, एंजॉय इट इंशाल्लाह.
वो है ना कि जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर डट गए, तो वो डटना बड़ा ज़रूरी है ना. क्योंकि जब आपने जो है इन लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, लेकिन इसमें ये चीज़ है ना कि जब हमने कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है, तो फिर अल्लाह ने टेस्ट करना है कि देखो भाई कि वाकई तुम ईमान लाए हो कि नहीं लाए.
और तो भी सबसे पहली चीज जो अल्लाह टेस्ट करते हैं ना, कुरान, वला नब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ, यानी जो खौफ हम जो आज बात कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने इसको लिस्ट पे टॉप पे रखा है कि तुम हमें, हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे
और भूख से. और हजरत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सबसे बड़ी भूख वो है कि ख्वाहिश भी हो और पूरी भी ना हो रही हो. कम आरजू वाला इंसान पुरसकून रहेगा. एक चीज तो आपके हाथ में है ना, वो कहते हैं ना इतनी ख्वाहिशें लोगों ने इकट्ठी की होती. मेरे पास एक शख्स आया तो मैंने उससे पूछा कि आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों हुआ. कहते पहले मैं ब्रांडेड चीज़ें ले सकता था, अब नहीं ले सकता. मैंने कहा इसके अलावा दैट्स इट. मैंने कहा नहीं और कोई मसला. कहते नहीं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है, लेकिन पहले जो चीज़ें मैं बाय कर सकता था अब मेरी वो नहीं रही, बैंक पावर नहीं रही. तो उस वजह से मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे दोस्त ने ये पहना हुआ है, फलाने ने ये पहना हुआ है, सिर्फ कंपैरिजन की वजह से. हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी देखो अपने से नीचों को देखो कि देखो लोग किन किन हालात से गुजर रहे हैं.
वो ना खुश नसीब हुआ है जो अपने
नसीब पर खुश है.
चलो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि यू नो एक समबड़ी, एक यंग लड़का है, लड़की कोई भी है, यू नो आजकल मैरिड अनमैरिड जो भी एक सिनेरियो लेते हैं हम, बट उनको ना ये एक सिवियर किस्म की एंग्जाइटी है. मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग डे में वो एंग्जाइटी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है. एंड दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, दे नो द प्रॉब्लम. उनको पता है कि यार पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन भी है, सारी बातें उनको पता लग रही हैं. बट व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर मिसिंग आउट ऑन? क्या वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं कि वो इस चीज़ से बाहर निकले?
देखें उस्ताद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay. एक साइकोलॉजिस्ट, और वो भी जो उसके पास मेडिकल नॉलेज भी हो, और मैं तो देख रहा हूँ कि और इस्लामिक नॉलेज भी हो, जिस तरीके से वो बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है ना, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, कि जो काउंसलिंग भी जानता हो और उसके पास दीन का इल्म भी हो. क्योंकि ये घुमा फिरा के बात वहीं पे आती है कि ये ख्यालात, शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, वसवसा
देता
है, और वसवसा ही उसकी तरीका है वारदात है. तो कोई भी बंदा जो उसकी काउंसलिंग कर रहा है, मैं एक चीज़ जो बड़ी इंजॉय करता हूँ, और ये मैं बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की ना कि मैं बीच में ना बात करता था, पेशेंट आता था, जब वो बोलना शुरू होता था तो मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया उनको 15-20 मिनट. वो जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया होता था, बल्कि मैं फिर अब ये भी कहने लगा हूँ कि आपको जो जो ख्यालात आते हैं आप उसको लिख लें. और जब आते हैं और जब वो सिर्फ बताना शुरू करते हैं, जो है ना वो जो अच्छा सवाल है ना, वो भी आधा जवाब होता है. तो वो जब बोलते हैं और फिर जब उनको उसका जवाब मिलना शुरू होता है, जहन खुलता है, बेहतर महसूस करते हैं. लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन फील करते हैं. तो एंग्जाइटी के पेशेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी कि ओवरनाइट चीज़ें ठीक नहीं होती. अगर वो बीमारी आपको अल्लाह के करीब कर रही है, तो वो आपके लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है. आप ये देखें कि आप जा किस तरफ रहे हो. हम क्या समझ रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि नहीं ये बीमारी मुझे हो गई है तो पता नहीं अल्लाह मुझे किसी सजा में उसने डाला है. देखें
हम असल में दुनियावी तौर पे बड़ा देख रहे होते हैं. आई बिलीव कि हमें कोई भी दुनियावी, जैसे आपने कहा ना वो ब्रांड वाली जो एग्जांपल दी, हमें कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है ना, हम सबसे पहले दुनियावी तौर पे देखते हैं कि मेरी दुनिया कितनी छुट रही है इससे, एंड दैट कॉजेज अस लॉट ऑफ टेंशन एंड परेशानी. हम और हमने ये भी कॉन्सेप्ट बना लिया है कि अगर मुझे दुनिया मिलती जा रही है तो इसका मतलब अल्लाह मुझसे राज़ी है, और दुनिया मुझसे छिन रही है तो इसका मतलब शायद अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं. जबकि
स्लॉट कॉन्सेप्ट है ये. इवन कुरान में तो ये भी आता है कि बल्कि वनब्लूकुम बिलखैर व शर फितना, हम तुम्हें आजमाएंगे खैर से और शर से, तुम्हें दे के भी आजमाएंगे और ले के भी आजमाएंगे. और अक्सर लोग देने वाले आजमाइश में फेल हो रहे होते हैं, यानी जब अल्लाह ने कुछ छीन लिया तो अक्सर लोग पास हो जाते हैं। और हदीस में तो आता है कि अल्लाह ताला उस मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु औ युसिब मिन्हु, अल्लाह जिसे खैर का इरादा करते हैं ना उसको परेशानियों में डालते हैं। और आप देखते नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और सबसे ज़्यादा उनको ही टेस्ट में डाला।
किस किस्म के टेस्ट थे उनके?
और इतने यानी इतने आजमाइशें, वो इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम को जब भी हमने आजमाया उसने वफ़ादारी की। सो हदीस में आता है अशदु बलाअ अल-अंबिया, सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पे आई हैं। सो जब अल्लाह के अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को आजमाया अपने सबसे प्यारे को, एक ही साल में उनकी बीवी भी ले ली और चाचा भी ले लिए, मक्का वालों ने निकाला, उसके बाद शेबी अबी तालिब में उनको चमड़े खाने पड़े, घास खाने पड़े
यार, पांच बच्चों के जनाजे,
पांच बच्चों के बेटों के जनाजे,
बेटों के जनाजे
यानी बेटियों के भी जनाजे, उम्मे कुलसूम और रुकैया का जनाजा, ठीक है, और बद्र के जिस दिन फतह हुई उस दिन उम्मे कुलसूम की डेथ हुई थी। तो कहते हैं इट्स अ ग्रेट डे ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो एज वेल, यानी फिर आपके दांत शहीद हुए, फिर आपके हमजा चले गए, आपके मुस्तफा बिन उमैर चले गए, आपकी औलाद जा रही है, आपको मुनाफिकीन बगावत कर रहे हैं, कुछ मुनाफिकीन अंदर हैं जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और कह रहे हैं और तुम्हारे माल खरने से खर्च करने से कुछ भी नहीं होगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुछ लोग छोड़ चले जाएंगे, और अहज़ाब आ रहे हैं आप अटैक करने के लिए, और आप जो है ना खंदा खोद रहे हैं और पेट पर दो दो पत्थर हैं, या अल्लाह इतनी मुश्किलात, लेकिन क्या अल्लाह ताला अल्लाह की से नफरत करते वाले आज़ो बेला। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लें ना कि अल्लाह ताला, यार एक वो वीडियो प्ले करें जरा। इस वीडियो में आप देखें कि ये जो बच्ची जा रही है, ये जो बच्ची गिरती है, इसका गिरना अल्लाह ताला ने कितना खैर का बायस लिखा हुआ है। वो इस वीडियो में वो बच्ची जा रही है, वो उसको ठुट लगता है और वो गिरती है, और अचानक से एक शख्स जो गाफिल है तेज़ गाड़ी चलाता है और उसके उसके ऊपर से गुजरता है, मगर टायर्स टच नहीं करते उसको, और वो उठ के दोबारा चलने शुरू हो जाती है। इमेजिन अगर ये ना गिरती तो ये गाड़ी उसको हिट करती और ये मर जाती। तो अल्लाह ताला जब आपको लाइफ में गिराते हैं ना, तो ये बचाने के लिए होता है, शायद या तो जहन्नम की आग से या आने वाली आफत और मुसीबत।
यार हमारा तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी है ना कि जब तक आप किसी अपने आप को, वो तो कहते हैं अपने आप को खुद चैलेंज करें, यू नो, गेट गेट योरसेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ताकि आपकी वो, दैट्स व्हेन द लर्निंग हैपेंस। तो जो भी मुसीबतें परेशानी अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं, वो हमारे खैर, हमारी उसमें से कोई ना कोई लर्निंग होती ही है।
और उसे भी मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपको इस कायनात में सिर्फ एक ही शख्स मुसीबत से निकाल सकता है, वो आप खुद हैं, अल्लाह के बाद। वो डेविड गॉगिंग्स है ना, द टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट, तो वो
क्या बात,
क्या ठीक है,
वो बड़ा क्रेजी जैसा बंदा,
बड़ा क्रेजी बंदा है,
नहीं नहीं बड़ा
बड़ा, यस यस, हैट्स ऑफ टू हिज विल पावर।
लेकिन उसका सिर्फ ये है कि उसकी टॉक्स पे गालियां बड़ी हैं, जो
गालियां बड़ी हैं
उसको बीच में से निकाल दे,
वो निकाल दे, बाकी ठीक है।
और डेविड गॉगिंग्स दोस्त कहता है कि मैं इसके साथ रह रहा था, तो इसने मुझे ना कहा कि पुलअप्स कर, तो कहते हैं मैंने अपनी मैक्सिमम जोर लगा के ना 10 पुलअप्स किए, तो जब मैं नीचे होता उसने कहा कि रेस्ट करो 10 सेकंड्स का, दोबारा छोड़ो, तो कहते हैं मुझसे 3 या 4 मुश्किल से लगे। उसने कहा रेस्ट रेस्ट करो 10 सेकंड का, फिर करो। उसने कहते हैं मुझे एक मुश्किल से निकला। डेविड हॉकिंस ने कहा आज हमने 100 पुलअप्स करने हैं यहाँ पे। कहते हैं नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कहते हैं आई एम स्टेइंग हेयर, तू भी यहीं पर, जब तक तू 100 पुलअप्स नहीं करेगा ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और कहते हैं मैं 10-10 सेकंड की रेस्ट के बाद एक करता और करते 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 ये कहते कि जो हमारे मसल्स हैं ना, ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं मुशक्कत की। और कहते हैं आई डिड दोज 100 पुलअप्स इन ऑन दैट डे एट वेरी सेम टाइम, एक ही करके। बस करना क्या था कि तू भी यहीं पे और मैं भी यहीं पे हूँ, ये करके जाना है। और वो एक वाक्य भी आता है कि जिसमें एक 12 साल का लड़का था और 15 साल का भाई था, ये दोनों भाई थे आपस में, वो जा रहे थे, तो जो 12 साल वाला भाई ना वो कुएं में गिर गया। अब 15 साल वाले ने शाउट किया एंड दे वर ट्रैवलिंग, दे वर ऑल अलोन, तो वो 15 साल वाले ने ना उसको ना बाल्टी डाल के उसको निकाला, आगे गए तो वो एक बच्चा गीला था बस, उन्होंने कहा कि तुम क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कहते मैं कुएं में गिर गया था। तो फिर निकले किस तरह से? कहते मेरे जो 15 साल वाला भैया से मुझे निकाला। कहते इम्पॉसिबल है, ये 15 साल का लड़का तुझे निकालेगा, तुम तकरीबन सेम हाइट सेम फिजिक हो, तुम्हें कैसे निकालेगा? और पुल करके वो भी इतने मुश्किल से। तो बाबा जी बैठे, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसे निकाला होगा। उन्होंने कहा क्यों? कहते क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं नहीं निकालूंगा तो फिर कोई और नहीं निकाल सके मेरे भाई को। जब यकीन आ जाना कि मैंने ही निकलना है इससे और इस मुसीबत से, और कोई मेरी आके उंगली पकड़ के नहीं जाएगा, और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वह हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, तो फिर आप निकल सकते हैं इंशाल्लाह।
मेरे पास 3 माह पहले एक पेशेंट आए, छोटा बेटा उनके साथ ना, तो वो इस हद तक होपलेस, क्योंकि वो चेहरा ही इतना मायूस था कि मतलब वो बड़ा, मेरा मैंने बड़ी कोशिश की 15-20 मिनट के मैं किसी तरह से उनको, लेकिन वो किसी सूरत भी बात कन्वे नहीं हो रही थी। तो बस मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा कि देखें ख़ुदकुशी का तो ऑप्शन है ही नहीं ना, इसके अलावा जो मर्ज़ी सोच लो, इसके अलावा बात करो। जब भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं अपनी बात का स्टार्ट ही इससे करता हूँ, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद लेके आया होता है। शिफा है, कोई डॉक्टर के पास तो नहीं, शिफा तो मैं जाने वाला है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि किसी भी बीमार के लिए सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अल्लाह ने कोई एक भी ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। एक दिन एक ज़रा ज़्यादा समझदार साहब आ गए तो कहते हैं सिवाय मौत के। तो मैंने कहा मौत तो शिफा ही शिफा है, ठीक हो गया ना, जो इस ज़िंदगी में कुछ कर रहा है तो वो उसके लिए तो मौत शिफा ही शिफा है। तो मैंने कहा बस अपना ख्याल बदल लो, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो आजकल चल रहा है उसमें यही है कि दीन से दूरी है, ये एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए परेशानी आती है या तो इल्ला बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आती है, या अपने हाथों का। तो क्वेश्चन करें खुद से, ठीक है, कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो उसको ठीक करें। कोशिश करें कि आपसे आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा हो। इसी तरह से अगर आपकी चाल ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह के करीब करने आई है। घबराना नहीं है इससे, गम से घबराना नहीं है, गम को रीट करना है। एंग्जाइटी 60% एंग्जाइटी के पेशेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, फिर रोज़मर्रा के वो काम जो वो खुशी खुशी किया करते थे अब वो नहीं कर पा रहे। इसी तरह से शादीशुदा लोग जो होते हैं उनकी जो ये लिबिडो है, सेक्सुअल डिज़ायर, ये कम हो जाता है। इसी तरह से फिर सेल्फ हार्म तक बात चली जाती है। तो यही है ना कि अगर आपकी फैमिली में इर्द गिर्द कोई बंदा है ऐसा तो उसको देखें, उसको हेल्प की ज़रूरत है और तलाश नहीं छोड़नी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो गिव अप कर जाते हैं। वो कहते हैं कि जी 3 डॉक्टरों को दिखाया, इसका दिमाग ख़राब हुआ है, ये ठीक नहीं होता। और जब वो ये गिव अप कर जाते हैं ना, फिर उसके बाद उस बंदे की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक चीज़
जमजम को भी देखें ना, जमजम की जो है, यानी ये जो होप है ना, होप असल जो होप है, जो अपने बात की यार, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। व्हेन यू हैव होप इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड व्हेन यू हैव होप एंड फर्म बिलीफ, जमजम जो हम पीते हैं ना, जो शख्स ये हदीस को जहन में रखते हुए पीता है कि अल्मा जमजम लिमन लम शरिब लहा, ये जो दुआ करेगा उसके लिए पूरी होगी। तो जब ये पीता है ना इंसान, और आप देखें सुब्हानअल्लाह, अल्लाह ताला कितने गनी है कि यार, मैं उस दिन कुरान में इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं और मैं हैरान हो गया ये आयत को देख के। वसीम भाई, शैतान ने ना अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया रूप होगी, सब शैतान को कहा कि सजदा करो। इमेजिन ट्रिलियंस ऑफ एंजल्स ऑल वेंट टू द सजदा, बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, एक इब्लीस खड़ा वैसे करके। अच्छा, एक तो तूने गलत किया, ऊपर से उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह तस्जुद इज अमरतुक, क्यों तूने सजदा नहीं किया? कहते हैं अना खैरु मिन्हु खलक्तनी मिन नार व खलक्तहु मिन तीन, यानी एक तो तकब्बुर किया। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा निकल जा, दफा हो जाए से, तू अर्रजीम है, फखरुज मिन्हा, निकल जाए यहाँ से, तू तो जलील और रजीम है। अब शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की, तकब्बुर किया, अल्लाह को नाराज किया और रजीम करार दे दिया, फिर भी अल्लाह से कहता है या अल्लाह मुझे तो ना मोहलत दे दे। और अल्लाह ताला का गनी होना देखें, इन्ना का मिनल मुंदरीन, तुझे मोहलत दी गई एट अ टाइम ऑफ नाफरमानी, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से दुआ कबूल फरमा रहे हैं। इवन आप कुरान पढ़ लें, जो लोग कुफार अल्लाह से शिर्क करते हैं, जब वो समंदर में तूफान फंसते हैं तो अल्लाह ताला को सिंसेरली जब पुकारते हैं, अल्लाह तू ही है, कोई लात मनात उजा नहीं बचा सकता, तूने मुझे बचाना है, अल्लाह ताला कुफार की भी सिंसेर दुआ कबूल फरमाते हैं। मैं और आप तो फिर भी मुसलमान हैं, मैं और आप फिर भी सजदा अल्लाह के सामने करने वाले हैं, हमने नहीं कहा अल्लाह हम बेहतर हैं और हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। सो दुआ वो कबूल होती है جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اس طرح دعا کرو تمہیں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی, یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا, تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا. اور مجھے پتہ ہے وما ذالک علی اللہ بھی عزیز, جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا, اللہ اکبر, زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکم بے دعائے کربی شقیہ, یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نومید ہی نہیں ہوا.
سبحان اللہ.
ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ, تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یا رب. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا, تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کریں گے انشاءاللہ.
کیونکہ اس میں یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے نا کہ ہمارا اکثر انفارچونیٹلی ہم اپنی عقل کو نہ بیچ میں اپنی دعا کے لے آتے ہیں, ہمیں لگ رہا تھا یار یہ ویسے ٹیکنیکلی تو مشکل ہے لیکن مانگ لیتے ہیں شاید ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اگین ہم اکثر بات کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا نا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے نا, کہ ہمیں نعوذ باللہ ہمیں کہ اللہ پہ شک تو نہیں ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بیکاز وہی بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جب سمجھتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں, لائک دا موسٹ امپاسبل تھنگ دیٹ یو کین ایون جسٹ وائلڈلی امیجن اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ. سو یو نو پھر دعا تو ہے وہ تو ہم کو بڑی ڈیسنٹ سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, بڑی حلال کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو یار یقین سے مانگے تو ان شاء اللہ کیوں نہیں آئے.
قرآن میں بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرو جو تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ تم نہ پسند کرو وہ تمہارے لیے ٹھیک ہو. اکثر لوگ نا دعا کو پھر وہ ضد اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ وہ اپنے ٹائم سے قبول ہوگی. بلکہ کل میں آڈیو سن رہا تھا تو وہ بڑی پیاری دعا انہوں نے کی کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا تقسیم کریں کہ تو خوش ہو جائے.
کیا
بات, یہ دو طرفہ محبت رہا کہ آپ چیک کریں کہ یا اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور ہم تیری راہ میں اتنا دیں کہ تو خوش ہو جائے.
کیا بات,
جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں نا وہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, گلا کر رہے تھے میرے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, اللہ کو نہیں پتہ نہیں انہوں نے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ, الحمدللہ. میں نے کہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. نہیں تو اگر آج آپ کو بتا دیا جائے نا,
صحیح بات ہے,
تو اگلے جتنا بھی ہے, بلکہ وہ عمر سے ریلیٹڈ نا اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. اصل میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے, کتنی رہ گئی ہے کسی کو کوئی نہیں پتا. جتنی رہ گئی ہے, جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزرے. اور اللہ کی راستے کی نا دو راز کی باتیں ان کی ایک آڈیو میں کہتے ہیں, ایک راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کا راستہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. جب آپ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو اللہ کی رسی کو, تو پھر وہ خود مدد کرتا ہے. کچھ عرصے کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ رہتا ہے, سکون قلب رہتا ہے, تو وہ سفر آسان رہتا ہے. دوسرا راز کی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں گلہ نہیں ہوتا. گلہ جو ہے نا وہ آپ کی جتنی جو انعامات ہیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نوازشیں اور کرم کیا ہوا ہے, اگر آپ نے گلہ کر دیا نا, اور ہم کیا کرتے ہیں مخلوق کا گلہ خالق سے کرتے ہیں, خالق کا گلہ مخلوق سے کرتے ہیں, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو ذرا ہم اپنے کیونکہ زبان سے بڑی پکڑ ہونی ہے, یہ جو آپ کی زبان ہے نا اس کو, اس سے آپ کیا, جیسے وہ اکثر کہا کرتے کہ کن فیکون, کچھ بولا گیا کچھ سنا گیا اور پھر کچھ ہوا. تو یہ جو انسان کو بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک انسان کی خاص بات ہے, اونچا سنتا ہے دھیما بولتا ہے. یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہو کان لگا کے اور نرمی سے بات کر رہے ہو, لیکن وہ آج کل انفارچونیٹلی یہ بالکل الٹا ہوا ہے, سننے کو کوئی تیار نہیں ہے اور جو ہے وہ بولنا جو ہے. تو یہ بس ذرا سی اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے, اس کو صحیح طریقے سے زبان کا استعمال, کیا سن رہے ہیں, کیونکہ خیر اور شر کی آواز بیک وقت آ رہی ہے. تو آپ نے اپنی آپ کو ٹرین بھی کرنا ہے کہ جب وہ خیر کی آواز آئے تو آپ اسی کی طرف جائیں.
ویسے الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک جو پریشانی ہے جتنی قسم کی ہوئی ہو نا, ابھی آپ نے سکون کا ٹچ کیا نا, تو وہی قرآن کی آیت اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یار آپ کے پاس جو پریشانی آ رہی ہیں وہ جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں, فائنینشیل ہو سکتی ہے, کسی لوڈ ون کا لاس ہو سکتا ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ جو انٹرنل سکون جو ہے نا وہ آپ کا کوئی نہیں لے سکتا. دیٹ کین اسٹے ود یو ایز لانگ ایز یو ہیو یور ریلیشن شپ سارٹیڈ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں بھائی, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جب بھی کوئی پریشانی ہو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, آپ دعا کریں, آپ ذکر کریں, آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح بچے ماں باپ سے ضد نہیں کرتے کچھ بھی چیزوں کو اپنی ڈیزائرز کے لیے, جو بھی خواہش, آپ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے مانگیں کہ یار میری جو پریشانی ہے, میری انگزائٹی ہے, میرا ڈپریشن ہے, جو میری ٹینشن پریشانی ہے, جو مجھے پاس کی فکر ہوتی ہے, جو مجھے فیوچر کے بارے میں ٹینشن رہتی ہے, یا اللہ جسٹ ریموو اٹ فرام مائی ہارٹ, میرے دل و دماغ سے باہر نکالے. اینڈ یو نو دین ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس. اوبویسلی وہ شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کچھ لائف اسٹائل چیزوں کے بارے میں بتایا, وہ ساری کریں, اپنے ڈائٹ کو ٹھیک کریں, ایکسرسائز کو لے کر آئیں, بزی یور سیلف ود پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کریں, اپنا اسکرین ٹائم ریڈیوس کریں, گرین ٹائم بڑھائیں, یو نو پھر پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارے کے بارے میں کریں. جیسے آپ نے کہا مینٹور ایک ہونا چاہیے, یو نو ہیو دیٹ مینٹور, کوئی کوچ, کوئی کاؤنسلر جو کہ آپ کو ان سارے پروسیس میں گائڈ کر سکے اسپیسیفک ٹو یور پرابلمس, کوئی ٹراما ہے پاسٹ کا, کچھ بھی ہے, بٹ یو نو بٹ فرسٹ فکس یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی سٹارٹنگ
پوائنٹ. سوائے اللہ کے ذکر کے, یہ تو اللہ نے بالکل سٹیمپ کر دیا ہے نا کہ اس کے علاوہ سکون مل ہی نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, میں وہ سن رہا تھا, ایک شخص تھا وہ, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں, تو آپ میرا ایک سوال پوچھیں اللہ سے کہ میں پہلے بڑا نیک ہوا کرتا تھا, اب جو ہے نا میں گناہ بھی کرتا ہوں, تو اللہ سے پوچھیں وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا, وہ مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, سوال پوچھا, واپس آئے, جواب ملا, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا سوال, کہتے جی پوچھا, تو کیا جواب آیا, کہتے ہیں اللہ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ کہ جب وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تو اس کو, اس کے دل کو جو ایک سکون ہوتا تھا, کیا وہ اب ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہتے جس, تو جس کے دل کو سکون نہیں ہے وہ عذاب میں ہی ہے, عذاب کی ایک شکل دل کی بے سکونی بھی ہے. تو اگر آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو اس کو سمجھیں, کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا, بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ تم, اللہ تمہارا دوست ہے اور تم اللہ کے دوست ہو, اب سوچو تم کیسے دوست ہو, یعنی کہ اللہ کے کون سے کام ہے جو تم کر رہے ہو, جو اللہ نے تمہارے اوپر جو شریعت نافذ کی ہے کیا اس کی پابندی کرتے ہو, کیا وہ سارے احکامات پورے کر رہے ہو, یعنی کہ اللہ کو تو آپ پکار رہے ہو لیکن اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے وہاں پہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. کیونکہ جب آپ عمل کرنا شروع کر دو گے شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو زندگی میں سکون نہ ملے, کیونکہ یہ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں ہیں.
بالکل ایسے,
بھوکے کو کھانا کھلائیں آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے. اسی طرح سے ہر نماز میں نہیں لیکن کوئی ایک آدھ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ کا وہ سجدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر کے اٹھتے ہو تو آپ کی ایک کیفیت بالکل ایسے آپ لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ جیسے کوئی ایک بالکل آپ بوجھ اتر گیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور خدمت عبادت اللہ کی, محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. یہ جو انسان کی خدمت ہے نا اس کے اوپر بھی, کہ بلکہ وہ میرے خیال سے منو بھائی کا ہی واقعہ ہے, اشفاق احمد صاحب اور منو بھائی کا. تو کسی شخص نے اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ زندگی آسان کرنے کی ٹپ دے دیں, تو انہوں نے کہا میں تمہیں موت آسان کرنے کی ٹپ نہ دوں, تو انہوں نے کہا چلے وہی دے دیں, کہتے جاؤ کسی کی زندگی آسان کر دو. تو یہ جو ہمارے ارد گرد جو پریشان لوگ ہیں ان کی اگر ہم ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے خالص اللہ کی رضا کے لیے. ہمارا ایک اور بھی مسئلہ یہ کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں کچھ اس کے بدلے کچھ لینے کے لیے. وہ ایک شخص آیا میرے پاس کلینک پہ, تو اس نے دیکھا نا وہ بکس پڑی ہوئی تھی, تو کہتے کہ ان کی ایک کتاب ہے گفتگو, میں 10 سال ایک سوال کی تلاش میں رہا اور مجھے جواب نہ, ان کی اس کتاب میں یہ سوال پوچھا جا چکا تھا نا کہ اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی ہی نہیں, نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. نیکی ہے ہی وہی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. تم تو کاروبار کر رہے تھے, تم تو اچھائی کر رہے تھے, نیکی واپس لے رہے تھے, وہ اس کی عاقبت ہے, وہ اس کا عمل ہے. تم نے جس نیک نیتی کے ساتھ نیکی کی تم اپنی نیکی تو نہ چھوڑو, اور سارے چیک ادھر نہیں کیش کرانے, کچھ چیک جو ہے نا
ادھر کے لیے
ادھر کے لیے بھی چھوڑ دینے. اور یہی ہے کہ چھوٹی سی لائف ہے جی, 60 سال پتہ بھی نہیں چلتا, پلک جھپکتے 42 لیپ گزار چکا ہوں, فائنل لیپ
یہ کنفرم بھی نہیں نا کہ ہے کتنے,
پھر یہی نا کہ اب یہی فائنل لیپ اب کتنے سال ہیں.
صحیح بات ہے.
تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے بندہ, اور
صحیح بات,
کم آرزو رکھے. آج کل کا جو یہ جدید دور ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا ہے, کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. آپ جتنا زیادہ کمپیریزن کریں گے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی.
بیکاز آپ فوکس آپ کا سارا دوسروں کی بلیسنگس پہ چلا گیا جو آپ کے پاس نہیں ہے, اینڈ دا فوکس از ناٹ آن یور اون بلیسنگس. تو نیچرل سی بات ہے.
فرمتلے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے اس بندے کے لیے कि जिसको अल्लाह ने नेमत दी और उसने उस पर गिला किया। बहुत सारे लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे जिनको अल्लाह ने ब्लेस किया है लेकिन वो गिला कर रहे होते हैं, कहते हैं ये वो शख्स है जो अपने आप को खुद कोड़े मारता है। फिर ऐसे इंसान को जब तक ये चीज़ समझाई नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी कि पहले देखो तुम्हारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग है, तुम देखो कि कितना कुछ अल्लाह आपके ऊपर इनाम कर चुका है, ज़रा सा अपनी इन चीज़ों को देखो, कलमा तुम्हारे पास है, तौबा का दरवाज़ा खुला है, इतनी सारे इनामात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम उम्मती हो, ये जो बस माल 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 इसी के पीछे ना, और मैं यही देख रहा हूँ कि मेन वजह व मिनकुम मन युरीदुद्दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में से ही लोग हैं जो दुनिया की तमन्ना करेंगे और तुम में से ही लोग हैं जो आखिरत की तमन्ना करेंगे। दुनिया ख़त्म नहीं करनी लेकिन हमारा एम्फेसिस आखिरत है। लोग जो है ना इधर की फ़ानी दुनिया के प्रॉब्लम्स, फ़ानी दुनिया के मसाइल, यही नमक मिर्च के मसले, इसी को लेके उलझ गए। भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है, बहन भाई पे केस कर रही है, वालदैन को रखने को कोई तैयार नहीं है। तो ये देखे ना कि मतलब अपने, और टोटल जो सबसे पहले जो पूछा जाएगा ना वो ये अपने करीबी रिश्तेदार हैं, बल्कि वो कहा करते थे कि जो भाई बहन है ना वो आधे माँ बाप हैं। तो जैसे अपने वालदैन का ख्याल रखते हो ना वैसे उनका भी ख्याल रखो। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कहीं हम बिल्कुल लोगों को कट ऑफ करके कोई ऐसी ज़िंदगी की तरफ तो नहीं चले गए जो कि बहुत खुदगर्ज़ ज़िंदगी है, क्योंकि सेल्फिश ज़िंदगी ना वो सुकून नहीं ला सकती।
लालच है ना, लालच ने हमें मार दी वैसे, और हमारा जो सेटिस्फेक्शन ना होना है चीज़ों पर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी जो बंदा, मैं तो अक्सर एंजाइटी डिप्रेशन पेशेंट कहता हूँ कि यार आप ना अगले नेक्स्ट 3 डेज़ में 300 ब्लेसिंग्स लिखें, हर दिन 100 ब्लेसिंग्स लिखें अपने पास, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं। एंड व्हेन योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द ब्लेसिंग्स यू हैव, आप ऑलरेडी, और मैं ये कहता हूँ कि आप कब्रिस्तान चले जाएँ या पिम्स हॉस्पिटल या उधर चले जाएँ, वंस यू विल सी पीपल जिनकी टांगें कटी हुई हैं, जिनको फायर लगा हुआ है, जिनको कैंसर, ये ज़रा कैंसर के वार्ड में जाएं कभी ज़रा, वैसे हमें जाके ना वहाँ बैठना चले, बैठना चाहिए एज अटेंडेंट किसी का ना, और देखें कि हम लोग, नौजवान 6 साल का बच्चा यार कीमो से गुजर रहा है और उसके सारे बाल ख़त्म हो गए और वो ढांचा बन गया है, हमारी प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल डिमिनिश होते हुए नज़र आ जाएंगी। और जैसे मैंने बात की ना मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो इसराइलिया जो जो नेशन बताई, मैं आलिम दीन से भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक शख्स आया और कहता है कि मैं इतने से गुनाह कर रहा हूँ, मेरे तो अल्लाह ताला मुझे नेमतों में नेमतें देते जा रहा है, आई डोंट थिंक अल्लाह एग्जिस्ट, मैं जो है ना मुझे पकड़ ही नहीं आती अल्लाह ताला है। उन्होंने कहा तुम आपने लास्ट टाइम नमाज कब पढ़ी थी, कहते कि महीना पहले जुमा पढ़ा था, कहते हैं अच्छा, कहते हैं लास्ट टाइम रोज़े कब रखा था, कहते हैं लास्ट रमज़ान में, कहते हैं अच्छा लास्ट टाइम अल्लाह को याद कब किया था, कहते हैं कोई हफ्ता दो हफ्ते पहले, और लास्ट टाइम सदका कब दिया था, कहता मुझे याद नहीं है मैंने कब दिया था, कहते हैं इससे बड़ा क्या अजाब है,
अल्लाह अकबर,
इससे बड़ा क्या जलालत है कि आप मस्जिद ही नहीं जा रहे हो, अल्लाह को, अल्लाह ने आपसे इतनी नेमतें महरूम की हुई हैं, इससे बड़ी क्या आजमाइश है। और मैंने देखा कि जो लोग ना वसीमी बहुत ज़्यादा लोगों से बातें शेयर करते हैं ना, इससे शेयर कर दी, हर किसी को अपने मसले बता दिए, वो फिर लोगों के रहमो करम पे हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको उनके हवाले कर देता है,
पूरा कंट्रोल दे देते हैं,
पूरा कंट्रोल देते हैं। तो क्या करें, इन्नी यशकु बसली बहुज़नी अल्लाह, मैं सिर्फ अपने रब से ही शेयर करूँगा और अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी हूँ, ज़िद्दी ना बने, ज़िद्दी कभी, अगर दरवाजे की हाइट छोटी है ना तो ना कहें नहीं 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 मैं तो चौधरी साहब हूँ, मैं तो जाट हूँ बाट हूँ, मैं यहाँ से झुक के गुजरूंगा ही नहीं। आप देखेंगे लोग गुजरते जाएंगे झुके, और आप अगर नहीं गुजरेंगे ना तो आप ही खड़े रहेंगे, आपकी ज़िंदगी का पहिया रुक जाएगा। तो क्या करें, कभी कभी ना झुक के गुजर जाएं दरवाजे से। वो मिसाल देता हूँ मैं कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफ़र करते हैं ना, और जो फ्रंट सीट ही के तलाश करते हैं कि मुझे यही मिलेगी तब तक मैं जाऊँगा नहीं, वो सारी रात खड़े रहते हैं। क्या करें, लटक जाएं पहले, फिर एक सवारी निकलेगी, फिर आगे बैठ जाएं, फिर आगे आके बैठ जाएं, फिर फ्रंट सीट भी मिल जाएगी आपको। सो एक वक्त का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो दूसरे वक्त की सक्सेस होता है। अगर हम आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और कह देंगे अल्लाह तेरा जो भी फैसला है मुझे कबूल है, मैं राज़ी हूँ, रदीना किस्मत अलजबारिफीना, तूने जो भी लिखा है हमारे लिए मैं उस पर 100% राज़ी हूँ, अल्लाह तेरे हाथ में पई है। तो अगेन मैं सुभानअल्लाह, ये हमारा दीन इतना खूबसूरत है, अगर हमें तवक्कल, तकदीर पे ईमान और अल्लाह के कामिल कादिर कदीर और मुक्तदिर होने पे यकीन आ जाए ना, हमारी ज़िंदगी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाए और हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सेट है, अल्लाह ताला।
मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे पास ना उस दिन आए तो उन्होंने कहा ना कि मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राज़ी है? तो हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो थी, उसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि जितना तुम अल्लाह से राज़ी हो उतना अल्लाह तुमसे राज़ी है। कुरान की आयत है ना कि इत्मीनान वाली रूह दाखिल हो जा जन्नत में, तू मुझसे राज़ी मैं तुझसे राज़ी। तो इस ज़िंदगी में भी आप एक स्टेप पीछे होके देखें कि कहीं आप अल्लाह से नाराज़ तो नहीं है माज़ अल्लाह, यानी कि कहीं आपको तो अल्लाह से कोई गिले नहीं है। इंसान है ना, अपनी नलायकी में, कमकली में, जल्दबाजी में, वो अल्लाह से भी कुछ इस तरह की
ऐसे अल्फाज बोलता है कि मुसीबतों ने हमारा ही घर देखना था,
अल्लाह
ये मुसीबतें मुझ पर क्यों आई, हालांकि फलां शख्स तो मुझसे ज़्यादा गुनाहगार है। तो ऐसी बातें इंसान को बिल्कुल उसका ईमान तबाह कर सकती हैं। हसीमी थैंक यू सो मच, अलवी थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।